रामिया प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास महाराज द्वारा 4 दिसंबर 1992 को प्रातः लगभग 8 बजे कलकत्ता में हुआ।
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण।
भगवद गीता में खास बात क्या है? मनुष्य मात्र के लिए विवेक शक्ति का आदर करना, ये विवेक शक्ति की मुख्यता है। आरंभ सांख्य योग से हुआ, परंतु सांख्य योग की बात खास विवेक की बात है। आरंभ ही अशोच्यानंद शोचस्तम यहां से आरंभ होता है, तो आरंभ में ही खास विवेक की बात कही है भगवान ने। अशोच्य अशोच्य उसे अशोक करते हो तुम, ये संसार की चीज है, ये शोक करने लायक नहीं है, ये तो सावधानी से काम करना चाहिए। और प्रज्ञावादान से भाष से बुद्धिमानी की बातें कहते हो और न शोक करने लायक शोक करते हो। तो प्रज्ञावाद बोलते हैं, प्रज्ञावाद जैसे वेदवाद है ऐसे प्रज्ञावाद है। प्रज्ञावाद नहीं, प्रज्ञा का आदर करना चाहिए। इस प्रज्ञा की अगर इस स्थिर बुद्धि, ये जो व्यवसायत्मक बुद्धि, अगर स्थित प्रज्ञा का लिखना है, ये इस प्रज्ञा का वर्णन है। यही प्रज्ञा शब्द आया है, पीछा हुआ आया है, ऐसा ते बीता सांख्य बुद्धि योगे तु विमर्शो, यहाँ बुद्धि शब्द आया है। पहले शब्द बुद्धि आए थे। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि विवेक प्रकट होने का एक स्थान, एक यंत्र है। जैसे बिजली सब तारों में रहती है, परंतु सब तारों में प्रकाश नहीं होता। जहां ये लट्टू लगा है, इस जगह आती है बिजली तो प्रकाश करती है। इसी तरह से सब जगह रहता हुआ विवेक बुद्धि में प्रकट होता है। ये बुद्धि का गुण नहीं है, ये बहुत गहरी बात है। आप विश्वास करें ना करें तो आपकी मर्जी है, परंतु मेरी समझ में एक बहुत विलक्षण बात आती है। ये विवेक एक अनादि तत्व है, और इस विवेक के बल से ही ये मनुष्य श्रेष्ठ कहलाता है, और सब लौकिक और पारलौकिक संपूर्ण सिद्धियां इस विवेक से होती है। और विवेक मैं और मेरे से मारा जाता है, विवेक का आदर नहीं करते। जिसमें मेरा मेरा जो चीज है, बहुत बड़ा भारी नुकसान इससे हो रहा है। जिनको मेरा कहते हैं ये चीज आपके साथ रहेगी ना, आप इनके साथ रहोगे नहीं। सार बात बताता हूँ एक बार भाई बहन इस पर ध्यान दें, जिनको आप मेरा कहते हैं वो कुटुंब है, धन है, मकान है, जमीन है, जायदाद है, जो कुछ मेरा कहलाने वाला है, ये आपके साथ पहले था नहीं और फिर आपके साथ रहेगा नहीं। ये शरीर है ये भी नहीं रहेगा साथ, ये भी मिला है और बिछड़ जाएगा। ये विवेक कहता है, ये विवेक सबको है, आप उस विवेक का आदर नहीं करते, कम करते और कहीं कहीं तो इसका दुरुपयोग करते। विवेक है आपकी बुद्धि में, उस बुद्धि को पापों के पैदा करने में लगाते हैं। जैसे विज्ञान है, लौकिक विज्ञान, वो विज्ञान दुनिया का हित करने के लिए है, वो विज्ञान बम बनाने लगा, अणु बम बनाने के लिए लगा, अणु स्फोट होना चाहिए जिससे बहुत जल्दी आदमी का नाश हो जाए। जैसे वो विज्ञान नाश के यंत्रों को बनाने में लगा है, ऐसे आप क्षमा करेंगे, बुरा न मानेंगे, आपने वो बुद्धि सबकी सब झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात में गया। किसने से करके धन ठग जाए तो हमारे पास आ जाए, ये धन ठगा नहीं जाता है, धन से आप ठगे जाते हो, महान आपका अनर्थ हो रहा है, परंतु मेरा कहना कौन सुने, सुनते नहीं मेरा बेटा, महान पतन हो रहा है। आप स्वयं साक्षात परमात्मा के अंश होते हुए रुपया पैसों का इतना मोह बढ़ा लिया कि जैसे बुद्धि भ्रष्ट हो गई, सत्य तत्व के समझने की शक्ति नष्ट हो गई, सब शक्ति इधर लगा दी। आप कृपा करें मेरी बात पर ध्यान दें, जिस विवेक का आदर किया है गीता ने, आरंभ विवेक से हुई है, अंत में शरणागति में समाप्ति हुई है, और विवेक का बहुत आदर है। ये जड़ और चेतन दो चीज है, तो दोनों साधन हो सकते हैं, जड़ भी साधन, चेतन भी मन, प्रकृति भौतिक चीज है ये भी साधन, और आत्म तत्व साधन और परमात्मा तत्व, तीन चीज है। एक ये प्रकृति, प्रकृति का कार्य जड़ वर्ग है, और एक जीवात्मा परमात्मा का अंश ये चेतन वर्ग है, और ये चेतन वर्ग परमात्मा का अंश है, इसका परमात्मा के साथ संबंध है। आप हम जितने बैठे हैं तो इन दोनों में माँ बाप का दोनों का अंश है, ऐसे प्रकृति का अंश चेतन और प्रकृति में परमात्मा का अंश चेतन और प्रकृति का अंश शरीर, इन दोनों से हम लोग मैं तू है। ये तो प्रकृति है वो नित्य नहीं है, परिवर्तनशील है, हर दम बदलती है, कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिस क्षण प्रकृति बदलती न हो। प्रकृति खुद बदलती है तो उसका कार्य सदा ही बदलता है, और बदल करके अभाव में जा रहा है, ये खास बात है। और चेतन अंश है वो भाव रूप सदा रहने वाला है, कभी नाश होने वाला नहीं, और ये प्रकृति और प्रकृति कार्य कभी विनाश से, परिवर्तन से, अभाव से रहित हो नहीं सकता। सत का कभी अभाव हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं। ये विवेक मनुष्य मात्र में जागृत है, और विवेक का आदर करने पर हरेक जीवन मुक्त हो सकता है। मनुष्य मात्र जीवन मुक्त हो जाए, कल्याण कर दे, उद्धार हो जाए, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, तत्व बोध कहते हैं, असली परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं वो हो जाए। सब भाई बहन इसके अधिकारी है, ऐसी बात मेरे को मिली है संतों से, शास्त्रों से, मेरी पढ़ाई से नहीं मिली है। पढ़ाई मैंने की है कई वर्षों तक, उससे ये चीज मिली नहीं। इसका अर्थ ये मैं समझ रहा कि पुस्तकों में नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं है, ख्याल में नहीं आती चीज सामने पर, ये ख्याल में नहीं आती। संतों की कृपा से ख्याल में आने पर वेद और पुराण और स्मृतियां और शास्त्र, संतों की वाणी इस विवेक से भरी हुई है, लक्ष्य नहीं होता, उसे ख्याल नहीं होता, उसे वृत्ति जाती नहीं। फिर उसे अधिकारी बताया अलग अलग, कई अधिकारी एक अनधिकारी है। वास्तव में विवेक का आदर करने पर सबके सब परमात्मा तत्व के प्राप्ति के अधिकारी है। पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, कसाई से कसाई, महान क्रूर हत्यारा, वो भी अब चाहे तो अपना कल्याण कर सकते हैं, जिनको शास्त्रों में अनधिकारी बताया है वे कल्याण कर सकते हैं। उनके लिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग तीनों तैयार। भक्ति योग के लिए क्या आप इसे सुदुराचार हो, अब इसे सुदुराचार हो, दुराचारों में भी सुदुराचारी बढ़िया दुराचारी, सांगोपांग दुराचारी, किसका भी अंग और उपांग भी दुराचार से रहित न हो, ऐसे दुराचारी। अगर भजते माम अनन्य भाव, एक भगवान के स्वरूप जाए, अनन्य भाव का ये नहीं कि तेज धारा व चिंतन हो, जैसे पतिव्रता स्त्री होती है वो कोई तेज धारावत पति का चिंतन करती है क्या, प्रियतर से एक पति के सिवाय कोई नहीं है, पति के स्थान किसी को नहीं मिलता है। वह हमारी माता जगत जननी जानकी जी राम जी वन में जाने लगे तब वह साथ जाऊंगी, महाराज जनक का जितना स्नेह था उससे दशरथ जी महाराज का स्नेह कम नहीं था। यहां तक दशरथ जी ने कह दिया ये जनक राज कन्या भी रह जाए तो मेरे प्राण बच सकते हैं, नहीं तो राम जी के वियोग में मेरे प्राण नहीं रहे, मर जाऊंगा। कितना आदर है दशरथ जी के हृदय में, कितना आदर है जानकी जी का, और कौशल्या ने कितना कहा राम को कि राम लला ये इतनी सुकुमार बड़े लाल प्यार से पली हुई जनक की प्यारी पुत्री है, ये मामूली नहीं है, इस बेटी पर बहुत ज्यादा स्नेह है महाराज जनक का। जब विवाह करने के वहां से रवाना करते हैं पाल की चढ़ाई तो उस समय में रो पड़े जनक जी, गोस्वामी जी को लिखना पड़ा मिटी महामर्जात ज्ञान की, महामर्जात मर्जात जी महामर्जात ज्ञान की, वो नहीं ठीक है, इतना स्नेह था, वो स्नेह प्रेम रूप से था, जैसे संसारिक मोह जैसा मोह नहीं था, रजा जनक मोह तो ज्ञानी कौन होगा, वो मोह नहीं है प्रेम है, इतना प्यार अपनी प्यारी पुत्री पर था, ऐसे महाराज दशरथ जी का प्यार था, इतना सब प्यार, कौशल्या का प्यार, सब प्यार होते हुए भी एक अनन्य भाव पति का, वो कहते सबके सब बिना पति के कुछ नहीं, सब छोड़ करके पति के पीछे गई, दुख पाया कष्ट उठाया, राम जी ने कह दिया कि मेरा कहना नहीं मानो दुख हो दुख पाओगी, दुख पाना पड़ा जिसकी संभावना ही नहीं थी, दुख हुआ तो वही कहते थे वन जंगल में दुख है, ना खाने को मिलता है, ना पीने को मिलता है, ना रहने को मिलता है, ना कपड़ा मिलता है, ऐसे कष्ट उठा होगी। और फिर कितना कष्ट हुआ है, इतने प्यार से पली हुई वृक्ष के नीचे बैठी है, ठंडी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, वर्षा पड़ रही है ऊपर, उस वर्षा में बैठी अकेली अशोक वृक्ष के नीचे। सब स्वीकार, परंतु श्री राम जी का वियोग स्वीकार नहीं। यही निष्ठा होनी चाहिए अपने के भगवान के बिना हम और नहीं चाहते। धन संपत्ति वैभव मान आदर सत्कार मिनिस्ट्री पद पद अधिकार कुछ नहीं चाहिए, तो महाराज आप निहाल हो जाओगे और इन चीजों को आदर दोगे और भगवान से हो जाओगे विमुख, तो महान दुर्दशा होगी, इसमें संदेह नहीं। यह भारतीय संस्कृति आपकी हिंदू धर्म बहुत विलक्षण है। जितने जितने छोटे उनको उनका आदर है, उनका जल्दी कल्याण होता है। कल युग नीचे से नीचा कल युग है, उस युग को कहते हैं कल युग, समुद्र युग, आन नहीं दो नरक विश्वास। उस युग में मगरी कल युग की महिमा करी। स्त्री पुरुष में स्त्री का दर्जा छोटा माना जाता है, परंतु स्त्री की महिमा करी वेद व्यास ने, स्त्री हो तुम धन्य हो, कल युग तुम धन्य हो, वर्णा में सूद है सूद तुम धन्य हो। मनु जल्दी से जल्दी कल्याण हो जाए, ऐसी बात है। यह भी बड़ा बनने चाहती है, सब बड़ा बनने चाहते हैं। नीचे जाति वाले भी सुनेंगे जने बुले हम बड़े हो जाओगे, भैया पतन हो जाएगा, बड़ी इच्छा मत करो। अगर बड़ी इच्छा करो तो बड़े का आश्रय लो, अपने को बड़े मत बताओ, बड़े का आश्रय लो, बड़े के शरण लो। बड़े से बड़े होते हैं जो वामन भुजदंड, जैसे वामन भगवान छोटे से वामन बन कर गए। मांगन जो जाता है जो छोटा ही होता है वो उसका आदर नहीं होता है, मांग लो गए पृथ्वी मांगी। जब महाराज पृथ्वी ले है तब बढ़ गए। सबसे लंबा अवतार हुआ वो, पर वो सबसे छोटा अवतार माना जाता है। वे वामन भगवान पृथ्वी लेते हैं नापते हैं तो बड़े हो जाते हैं। वास्तव में चाहने वाला नीचा होता है, तो बड़े बनना वास्तव में भीतर से बड़ा होना, चाहे ऊपर से बड़ा बनना बढ़िया नहीं है, बड़ा अधिकार बढ़िया नहीं है, धन संपत्ति बड़ी मिल जाए बड़ी नहीं है। बड़ा भगवान के चरणों का आश्रय है। वामन भगवान छोटे थे, उनके कान तक की बड़ी से बड़ी लाठी होती है कान तक की, धनुष होता है यहाँ तक, धनुष बड़ा होता है। तो वामन भगवान के समान ही भगवान का डंडा था हाथ में, डंडी दंड रखते ऐसे ब्रह्मचारी का पलाश का दंड होता है, यानी बांस का दंड होता है, दंडी स्वामी होंगे उस पलाश का होता है। इतना छोटा दंड था, परंतु जब बढ़े तो साथ साथ सूखी लकड़ी बढ़ गई। तो बढ़ोगे बढ़ोगे आश्रय लेने से, बड़ से यहां बढ़ होते है जो वामन भूल दंड तुलसी बढ़ प्रताप से दंड ले ब्रह्मांड, ब्रह्मांड को चाहिए दंड। इतना बड़ा उतनी लाठी उतनी बड़ी चाहिए। वामन भगवान की लाठी त्रिवक्रम भगवान जो विराट रूप है उसे दांत कुसने में काम नहीं आवे, इनका छोटा सा क्या काम। पर वो भी बढ़िया साथ में। सज्जनों आप मानो चाहे न मानो, बात सच्ची है, बिना भगवान के आश्रय आपकी बेइज्जती है, फजीती है। धन के कारण आप बड़ा मानते हो, हम धन हो गया बड़े हो गए, हमारे को पद मिल गया हम बड़े हो गए, ऊंचे वर्ण में जन्म लिया बड़े हो गए, ऊंचे आश्रम में आ गए हम लोग बड़े हो गए, कि आप बड़े नहीं हुए हो। धन से आप बड़े हुए हो तो धन की बड़ाई है, आपकी तो निंदा है। आश्रम से बड़ाई है तो आश्रम की बड़ाई है, व्यक्ति की बड़ाई नहीं है। पद से आप बड़े हुए हो तो पद बड़ा हुआ है, आप बड़े नहीं हो। पद से जा कौन पूछेगा, धन नहीं रहेगा तो आपको कौन पूछेगा। ये जड़ चीजों की बड़ाई से आप बड़ाई मानते हैं, ये बुद्धि भ्रष्ट हो गई। क्षमा मांगता हूं मैं, पर ये बुद्धि भ्रष्ट है, इसमें संदेह नहीं है। आपको बुरा ना लग जाए इस बात से हाथ जोड़ रहे हैं आपको, आपने क्षमा मांग रहे, परंतु बुद्धि भ्रष्ट हो गई। रुपये को, सिक्के को, गिनती को सबसे बढ़िया चीज माना है आज। और सच्ची बात यह, गुरु के समान रद्दी चीज कोई नहीं है। मैला है, रेती है, पेशाब है, टट्टी है, ये भी रुपयों से बढ़िया है। ये समझ में नहीं आता, कितना ही कह दो कोई आप मानने को तैयार नहीं, समझने के लिए आप तैयार नहीं, तो समझ में आएगी नहीं। पर मेरी बात सुन लो, सुनने के लिए आप आ गए, कभी सुनने के मारवाड़ी के बख में आ गए आप, तो अब सुनाऊंगा। पर कृपा करो कृपानाथ, इन बात की तरफ ध्यान दो। मैला स्वयं सूर के खाने में काम आता है, पेशाब रोगों के मिटाने में काम आता है, बकरिया आदि के रोग हुए पेशाब दे, मैंने देखा है खुद ने। रुपया कोई काम नहीं आता है, रुपया वस्तुओं के द्वारा काम आता है, स्वयं काम नहीं आता है। रेता स्वयं काम आता है, मिट्टी स्वयं काम आती है, कंकर पत्थर स्वयं काम आते हैं, रुपया स्वयं काम नहीं आता, चाहे सिक्के रूप से हो नोट रूप से हो, स्वयं काम नहीं आता, वस्तुओं के द्वारा काम आता है। तो एक पीढ़ी दूर है वे, दूसरी वस्तुओं एक पीढ़ी नजदीक है। शरीर के निर्वाह के लिए अन्न है, जल है, वस्त्र है, हवा है, पौधे है, फल है, पत्ती, ये आपके साथ एक साथ संबंध रखते हैं। और पैसा उन दूसरों के द्वारा काम आता है, उसे खरीद कर पैसे देते हैं। दोनों की परीक्षा करना हो तो एक आदमी को सोने, सोना, चांदी, रतन, हीरा, पन्ना, माणिक, मोती, ये सब बना करके एक चबूतरा बना दो बड़ा, जैसे ये ऐसा उस चबूतरे में बैठा दो, पर अन्न नहीं देंगे, वस्त्र नहीं देंगे, हवा तो ले नहीं जाकर देंगे नहीं, पानी नहीं पिलाएंगे, कितना दिन जीओगे। और हमारे को अन्न, जल, वस्त्र देते रहो, कभी एक तांबे का पैसा या गिल्टी का पैसा दिखाओ, बस देखो दर्शन ही मत करो कि हम मर जाएंगे। इस बात पर थोड़ा विचार करो, अन्नदाता कृपा करो, मेहरबानी करो। स्वयं रुपया काम नहीं आता है, उसमें भी गिनती, अब गिनती पर लगे है, रुपया ही नहीं गिनती, गिनती हो जाए, लखपति हो जाए, करोड़पति हो जाए, हम बड़े हो गए, आपकी फजीती हो गई। परमात्मा के साथ साथ चेतन अंश होते हुए रुपयों से आप बड़े हुए, तो आपकी बड़ाई कहाँ हुई, आपकी तो निंदा हुई, आपका तो तिरस्कार हुआ, आपका अपमान हुआ है। रुपयों की बड़ाई से अपनी बड़ाई मानते हैं, अपनी फजीती में इज्जत मानते हैं, क्या बताओ। कारण क्या है, विवेक का निराकरण किया, विवेक सत असत नित्य अनित्य कर्तव्य अकर्तव्य ग्राह्य त्याज्य आदि का जो विवेक था उसका निराकरण किया है, वो विवेक भगवान का दिया हुआ है, ये विवेक है गीता में। सबसे पहला भगवान ने प्रकरण ही बताया विवेक का, लोगों से आत्मनात्म मैंने पहले ही कली किया था। आत्मा नहीं है, सत असत का है, नित्य अनित्य का है, शरीर शरीरी का है, नाशवान अविनाशी का है, ये विवेक। आप खुद अविनाशी होते हुए विनाशी में फंसे हुए हो, आपके शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण ये शरीर बदलते हैं, आप नहीं बदलते हो। अनेक दुनियों में जन्म लेने पर भी आप वही रहते हो। भूतग्रामा सारे वयम भूतवा भूतवा प्रलीयते, उत्पन्न हो लोग नष्ट होते हैं, आप वही एक ही थे। दो चीज है ख्याल करने की, आप कृपानाथ कृपा करो, ध्यान दो। आप संसार का वियोग चाहते हो, ध्यान नहीं देते हो। आप बिना संसार के वियोग के बिना जी नहीं सकते। धारणा बनी है कि हम संसार के पदार्थों से जीते हैं, रुपयों से जीते हैं, नहीं तो हम जी नहीं सकते, धारणा है ये। परंतु वास्तविक तत्व है कि आप बिना वस्तुओं के रुपयों के वियोग बिना जी नहीं सकते। नई बात नहीं, आप क्या बात कह सकते। सच्ची बात कहता हूं, गीता जी की बात कहता हूं, गीता जी से जो मेरे को चीज मिली वो बात कहता हूं। अगर आप जानते हैं उस बात को, केवल लक्ष्य आपका उधर नहीं है, मैं बता दूं फिर भी लक्ष्य आप करोगे कि नहीं करोगे पता नहीं है, भरोसा नहीं है। कृपा करो आप, वैद्य के पास में जाओ तो वैद्य पूछता है नींद आती है, नींद आती है, नींद नहीं आती, खतरा है, नींद आती है। गाढ़ नींद में क्या होता है कि जागृत और स्वप्न में तो संसार के पदार्थों के साथ होते हो, और नींद में क्या होते हैं कि संसार संसार भूल जाते हो। और आप रहते बिना नींद के जी नहीं सकते। नींद में क्या है कि सांसारिक पदार्थों का वियोग है, उस वियोग में जो शक्ति मिलती है वो संयोग में शक्ति कभी किसी को मिली नहीं, मिलेगी नहीं, मिल सकती नहीं। शक्ति का ह्रास होता है जागृत में और स्वप्न में, सुसुप्ति में पुष्टि होती है, इंद्रियों में पुष्टि आती है, मन बुद्धि में पुष्टि आती है, निरोगता होती है। और काम करने से स्वप्न और जागृत में रहने से आपका शक्ति नष्ट होती है, ह्रास होता है, नींद नहीं हो तो पागल हो जाओ आप, काम के नहीं, संसारिक काम के नहीं रहते। नींद लेने से आपका स्वास्थ्य ठीक होता है। नींद में क्या है, संसार का वियोग है। अंधाता कृपा करो, संसार की वस्तुओं के वियोग में जो सुख मिलता है वो संयोग में सुख कभी मिला नहीं, मिलेगा नहीं, मिल सकता नहीं, संभव नहीं है। आप थोड़ा सा आदर करो। अनेक जोड़ियों में जाते हो तो स्थूल शरीर में कुत्ता तो कुत्ते का होगा, बिल्ली तो बिल्ले होगा, जो जिस शरीर में गाय भैंस भेड़ बकरी में किसी में जाओ उस शरीर में स्थूल शरीर हो जाता है, सूक्ष्म शरीर उसी का तो है। कुत्ता स्वप्न में भी अपन कुत्ता ही देखता है, इसकी पहचान है। आप अपने में ग्रस्त हो ग्रस्त ही देखोगे। बहनों माता है कुंवारी तो स्वप्न में कुंवारी देखेगी, ब्याह हो अपने बदल गया भाव के मैं ब्याह होगा तो स्वागत देखेगी, और विधवा को कभी सा स्वागत का मंत्र आएगा कुछ मतलब विधवा का ही स्वप्न में विधवा का ही आएगा, मैं विधवा हूँ। तो ये शरीर बदल गए, स्वप्न में बदल जाते हैं, जागृत में बदल जाते हैं, पर आप नहीं बदलते हो। वही मैं कुंवारी थी, वही मैं सुहागन थी, वही मैं विधवा हूँ, वही हूँ, और वही हूँ। ये परमात्मा का अंश है साक्षात, ये आपका नित्य स्वरूप है, उसकी एकता परमात्मा के साथ में और शरीरों की प्रकृति के साथ, प्रकृति कर रही है। भगवान ने जहाँ बताया कि ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, कृपा करें थोड़ा ध्यान दें, मम एव अंश बिल्कुल मेरा ही अंश है, एव का अर्थ ही होता है, मेरा ही अंश है, किसी के मिश्रण की बात नहीं, मम एव अंश मेरा खास अंश है। और सनातन भूत जीव भूत सनातन अनादिकाल से जीव रूप बना हुआ है, किसी दिन से नहीं। मनोस्वस्थानी इंद्रियानी मन है चटा इंद्रियों को, ये क्या है, ये प्रकृति से प्रकृति का कार्य है, प्रकृति से मनोस्वस्थानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी विशेषण दिया है, प्रकृति का कार्य, प्रकृति का अंश, प्रकृति में स्थित रहते हैं आप परमात्मा के साक्षात अंश होते हुए परमात्मा से विमुख होकर के प्रकृति स्थानीय मनुष्य स्थानीय इंद्रियों को खेलते प्रकृति साथ हो गए, सत्कार आराम इनमें ही फंस गए। आपका संबंध परमात्मा से कितने आप हो, किस दर्जे के आप हो, आप अपने को पहचानो, अंदाजा कृपा करो, पहचानो साक्षात सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान के मेरे पैदा किए सब मेरे को प्यारे हैं, भगवान का प्यार सबके साथ में, दुष्ट हो पापी हो उसके साथ में प्यार है भगवान का। रावण को मार दिया पर उनको वैकुंठ में भेजा, प्यार है, भैंस नहीं है, सब मेरे को प्यारे लगते हैं, परंतु आपको प्यारा पदार्थ लगता है, भोग लगता है, संग्रह लगता है, चीज लगती है, गिनती है, ये प्यारी लगती है, महान आनंद हो रहा है भाई। अगर विवेक को आप जागृत करो, आप भाई बहनों का खास अनुभव है कि बिना गाढ़ निद्रा के आपको शांति नहीं मिलती, और निद्रा में क्या होता है, प्रकृति को भूल जाते हैं, पदार्थों को भूल जाते हैं, विस्मृति होती है, और समुद्र से जो ज्ञान होता है, भूलने में इतना आनंद है, अगर संबंध विच्छेद कर लो तो निहाल हो जाओ। गीता में कह मम साधर्म मार्गता, जो भगवान के लक्षण वो आपके लक्षण है, सधर्मता गीता में आया है, सधर्मता मम साधर्म मार्गता भगवान के समान हो जाएगा, गीता में सधर्मता का विवेचन किया, गीता दर्पण में प्रकरण है पूरा का पूरा, जो वास्तव भगवान के लक्षण वो भगत के लक्षण, जो भगवान के लक्षण वो ज्ञानी के लक्षण, वो योगी के लक्षण, उनमें एकता है, इतना ऊंचा दर्जा आपको मिलता है भगवान के समान, और भक्ति करो तो भगवान का इष्ट हो जाए, भगवान ही नहीं भगवान का इष्ट अर्जुन कहते हैं, इष्टोस मेरे मसीह तू मेरा इष्ट देव, जैसे जीव का इष्ट देव परमात्मा है, भक्ति करो तो भगवान कहते हैं भगत मेरे मुकुट मणि मेरा इष्ट देव, भगवान के इष्ट देव हो जाओ, ऐसी बात है। मीराबाई यहाँ मामूली स्त्री यूं पद में बड़ी है, राजघराने की बेटी, राजघराने की स्त्री बड़ी, पर एक स्त्री भगवान के घर में कितना आदर है, आज संत महात्मा बड़े बड़े मीराबाई का पद सुनते हैं, शांति लाभ करते हैं, कारण क्या है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, कितने ऊंचा कर जाए। पतिव्रताओं का दृष्टांत संत महात्माओं की वाणी माता, पतिव्रता का अंक वर्ण माता है, पतिव्रता रहे पति के पासा यू साहेब के ढिग रहे दासा, जैसे आज रुपयों के साथ हाय रुपया ऐसे हे परमात्मा उसके साथ रहो, रुपया आपके चरणों में लूटेंगे, ये विश्वास तो होता नहीं, वो करा दे मेरे हाथ की बात नहीं, परंतु मैं बड़े जोर से कह सकता हूँ कि एक भगवान के शरण रहने से ये रुपये पैसे पैरों में लूटते हैं, आते हैं गर्ज करते हैं, गर्ज रुपये गर्ज करते हैं खुद, मैं कहना तो नहीं चाहता परंतु एक बात याद आ गई, लोग कहते हैं कि स्वामी जी रुपयों को समझते नहीं, मैंने रुपये पैदा किए हैं। अब कथा बात और किससे, आप लोग कमा कर करते हो, हम लोग कसा कर कर लेते, कसाया की है, रुपया भेज लिया है, रुपया रखा है, ठीक है। तो रुपया नहीं जानते, तुम त्याग को नहीं जानते, हम जानते हैं रुपया, रुपया त्याग दोनों को जानते हैं, तुम रुपयों को भी जानते, त्याग को नहीं जानते, तुम्हारे से गुणा जानता हूं। लोग कहते हैं समझते नहीं, ठीक है, मैं आप खुद कहता हूं मैं समझता रही, सच्ची बात है, हृदय से कहता हूं कि मेरी समझ तेज नहीं है, मेरी दृष्टि में जैसी समझ होनी चाहिए उससे कमी है मेरे में। परंतु सज्जनों, ये रुपया बिना सबसे तेज ये बात नहीं है, वो नहीं कहना चाहता, वो कहने की मन में हंसी है, वो ये है कि हमारी कथा में 100 रुपया आ देते, आज 60-70 वर्ष पहली बात है, 70-75 वर्ष पहले 100 रुपये आते हमारे एक कथा में, वो 100 रुपये कितने होते हैं आज, इसी बेटा आज 1000 रुपया लाखों रुपया मेरे को देने को तैयार है लोग, इतने लाख रुपये कथा में नहीं आते, ये इस वास्ते कही है बात कि रुपयों के मोह छोड़ने से रुपये कम नहीं होते हैं, ज्यादा होते हैं, आते हैं ज्यादा, पदार्थ और भोग ज्यादा आते हैं, संकोच होता है कहते हुए, परंतु रुपया रखने वाले साधु कितने हवाई जहाज में चलते हैं, हम कितने चलते हैं, रुपया रखने वाले साधु हवाई जहाज नहीं बैठ सकते, लग जाएगा, हमारी क्या लग जाएगी, लग जाए आपका लगे, हमारी क्या लगे, तो रुपयों के गुलाम हम होते हैं, वास्तव में रुपयों के अधिपति होते हैं हम। मैं तो कहता हूँ हंस की हंसी में सबको ही, आप कहते हमारी मोटर है, मोटर हम, मोटर पर हम चढ़ते हैं, आप पर मोटर चढ़ती है, मोटर की चिंता होती है, हृदय पर मोटर चढ़ी जाती है, तो हमारे पर मोटर नहीं चढ़ती, मोटर पर ही चढ़ते हैं, चिंता करती ही नहीं, काम पड़ा है, हमें चढ़ना था नागौर स्टेशन से, तो मुंडवे से उधर आए तो खराब होगी मोटर, तो चल झोरी घाट में चढ़, हम तो अंदर बोला चढ़ गए, मोटर की क्या दशा हुई हमें पता ही नहीं, आप पर मोटर चढ़ जाती है 8 पैर, मोटर खराब होगी और होगी, कोई लगी ऐसे मैंने मोटर की लग गई, तो समझ से कोई चिंता नहीं, इनकी बीमा बिस्ती बिकी हुई है, ये मेरे को रुपया पर, रुपया पर दृष्टि, तो आप घाटे में नहीं जाएंगे, नाम पर चाहते हो, नाम नाम अपने नारे है सुना सयाने लो, मीरा सुत जायो नहीं शिष्य मुंडी को, मीरा भाई ना तो लड़का हुआ ना चेला हुआ, नाम कितने आदर से लिया जाता है, जिनके चेला हुआ उनके, जिनके संतान है उनके, पीढ़ियों का नाम 3-4 पीढ़ी अगर नाम जानते नहीं आप, इन्हें कौन जानेगी, आज मीरा भाई को कितने वर्ष हो गए, कितनी पीढ़ियां बीत गई, आज वे बैठते हुए सरदार भी हमारे दादी से ऐसे हो, हमारे दादी से ऐसे हो, वे भी मीरा भाई का नाम लेकर वे अपने बड़प्पन का अनुभव करते, तो नाम वो बड़ा है का आपका बड़ा है, हम चेला बन गए बड़े, मैं तो चेला बन गए, कौन पूछता है, मीरा भाई कितना आदर, जितने संत हुए हैं, कोई संत पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कोई भगवान के भक्त हुए हैं, उनका कितना ऊंचा दर्जा है, याद करने से शांति मिलती है, मीरा भाई का पद गाने से शांति मिलती है, हजारों लाखों करोड़ों रुपयों से शांति नहीं मिलती, जलन मिलती है, जलन, मैंने आपके साथ रहकर देखा, रुपयों वालों के दर्शन किए मैंने, करोड़ों रुपया, करोड़ों अरबों, चिंता है, हमारे पास एक कोड़ी नहीं, टक्का नहीं और मौजूद ही अनुभव। इसका अर्थ ये नहीं तुम साधु बाबा बन जाओ, ये नहीं। हृदय में आदर भगवान का दो, मानदाता आदर भगवान का करो। रुपयों का इतना आदर मत करो कि जिसके लिए आप बड़े बड़े पाप करने को तैयार हो, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी चोरी डकैती ये करने तैयार हो जाओ। रुपयों के लोभ में आकर के ये बड़ी दुर्दशा होगी। रुपया खराब नहीं है, रुपयों की गुलामी खराब है। वो खुला आप अधिपति बनो, लखपति बनो, करोड़पति बनो, अरबपति बनो, आड़ू बनाएंगे बड़ी अच्छी बात है। पर आप लखदास हो जाते हो, करोड़दास हो जाते हो, रुपयों के गुलाम हो जाते हो, आपके लिए ये शोभा नहीं है। आप परमात्मा के अंश कौन हो, आप अपने घराने को समझो, अपने वंश को समझोगे आप हो कौन। रुपयों के गुलाम आप नहीं हो, माया के नाशवान के गुलाम आप नहीं हो, स्वयं अविनाशी और अविनाशी के अंश हो आप। वो समझाती है गीता विवेक के द्वारा कि इन चीजों से ऊंचा उठो। प्रकृति में पुरुषम देव विद्यनादि उभाव की अनादि है, जिसमें भी ये परमात्मा की ऐसी प्रशंसा है। वो विवेक से ही शुरू होता है आदमी। अशोचानंद सोचस्तो कहा, फिर 12-13 कहा, 13-14-15 कहा, दो दो श्लोकों में असत का वर्णन है, सत का वर्णन है, नित्य का वर्णन है, अनित्य का वर्णन है, विकारी का वर्णन है, निर्विकारी का वर्णन है। अरे फिर नाश तो सत असत के श्लोक है, नाश तो विद्यते भाव ना भाव विद्यते स्तर उभी और विदिष्ट। मैं तो कहा करता हूँ कि मेरा व्याख्यान इतना ही है, नाश तो विद्यते भाव ना भाव विद्यते स्तर आदि मेरी जितनी बातें हैं, जितने व्याख्यान है, सब श्लोक आप खोज लो। ये बात ना सो तो मुझे 16 अक्षर उभी और विदिष्टो तत्वदर्शी भी ही, ये तो उनकी महिमा बताई है। ना सो तो विद्यते भाव ना भाव सत्य, इसकी व्याख्या है। आप बोलेंगे स्वामी जी के लिए एक अच्छे है, ऐसे क्या है गीता में कहा ना सो तो विद्यते भाव ना भाव, इसकी टीका है। इसका विवेचन कितनी विलक्षण बात है गीता में। सज्जनों कृपा करो, मैं आपसे चाहता हूं कि आप भगवान का आदर करो, भगवान की वाणी का आदर करो, नाशवान रुपयों का आदर मत करो। इतना रुपया काम में लो, उपार्जन करो, अच्छे काम में लगाओ, वे कल्याण कर देंगे, पर मोह है आपको पसंद करेगा। सदुपयोग करो उनका, वस्तुओं का सदुपयोग करो, कमाओ उपार्जन करो, अच्छे से अच्छे काम में लगाओ, उपकार में लगाओ, दुनिया के हित में लगाओ, दूसरों के सुख में लगाओ, दूसरों का दुख मिटाओ। आपके रुपये महाराज निहाल कर दे आपको, ऐसी बात है। पर रुपये खुद को महत्व देते हो, ये गलती। वस्तु मात्र का सदुपयोग दुरुपयोग दोनों होता है। सदुपयोग कल्याण करने वाला है, दरिद्रता का सदुपयोग करेगा, धनवत्ता का सदुपयोग कल्याण करेगा। दरिद्रता का सदुपयोग भी कल्याण करता है, धनवत्ता का सदुपयोग भी कल्याण करता है, बीमारी का सदुपयोग भी कल्याण करता है, स्वस्थता का सदुपयोग कल्याण करता है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं कि जिस परिस्थिति में कल्याण न हो, केवल दुरुपयोग से पतन होता है। आप सब सबल हो, आप सब अधिकारी हो, आप सब अयोग्य नहीं हो, योग्य। आप में ताकत है, वो सदुपयोग करने की, दुरुपयोग न करने की ये शक्ति आप में है और जानते भी हो। परंतु पैसों के भोगों के लोभ में दो चीज, सुख भोग और प्रश्न संग्रह, ये दो चीजों से महान पतन हो रहा है। उस भगवान का निरादर कर रहे हो, पुण्य का शुभ काम का निरादर कर रहे हो, परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाए उसका निरादर कर रहे हो। केल भोग रेश संग्रह भोग, यही तनु कारा फल विषय है ना भाई। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, इस शरीर का फल परमात्मा की प्राप्ति, इतने ऊंचे दर्जे आए हो। और वो सरलता से गीता बताती, ऐसी गीता भी टीका तत्ववेश नहीं हो गई। इधर ये भी साधक संजीवनी भी है, और भी लेख है, सेठों के लेख है। कितनी विचित्र बात है, ख्याल नहीं आपको। मैं जब पढ़ता था उसमें कल्याण में शेर जी लेख आते थे, गोविंद का जी के। कौन है गोविंद का जी, कहाँ है पता नहीं। ऐसे समझता है कल्याण में जो लिखने वाले पंडित है उनमें लिखने वाले एक गोविंद का जी थे, इतने के सिवा कुछ परिचय नहीं थे। पर लेख ऐसे विलक्षण लगे, परीक्षा की पढ़ाई छोड़ करके ऊपर छत पर जाकर के तत्व चिंता पढ़ता है। कितनी विलक्षण बातें लिखी, कितनी अलौकिक बातें लिखी है, कितनी विचित्र बातें लिखी है। मन में आया कि पढ़े लिखे पंडित नहीं है, परंतु अनुभव इनको है जितना बड़े बड़े पंडितों को नहीं है, बड़े बड़े पंडितों को नहीं है। ये बात मेरी अच्छी नहीं लगती लोगों को, बुरी लगती है, मेरे पास शिकायत भी आई है, परंतु मेरे पर असर है, मैं क्या करूं। उन लेखों से खींच कर आया इधर मैं, नहीं तो हमारे गीता प्रेस को कोई काम नहीं। गीता से काम है, गीता सबसे है और गीता निकलती है। गीता प्रिय लगती है, बालक पढ़ने से भी गीता अच्छी लगती है। पढ़ाई करते हुए मैंने कहा महाराज हमारी गीता पढ़ा दो, तो हमारा यार शब्द बोलेगा, अरे यार यार क्या करेगा गीता, पढ़ लेगा आपसे आप बोल जाएगा, पढ़ जाएगा पढ़ तो कहना मानना तो मेरे स्वभाव था, बस वर्ग से आप पढ़ाई करेंगे अच्छी तरह से डट करके। पर गीता बढ़वा दो, गीता वो गीता आज देखता हूं जो मेरे को नई नई बातें मिलती है, बिल्कुल नई नई विचित्र बातें मिलते हैं। ये भाई लिखता है, इनको भी मैंने कहा ये आश्चर्य करता है, ये बातें ऐसी जैसे बहुत विचित्र ढंग से लिखती, बड़ी अलौकिक दी थी गीता, कितना विवेक भरा है। अब इसका विवेक का आदर हर एक करेगा, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, वो चाहे अंग्रेज हो चाहे मुसलमान हो, सच्चे कोई आदमी अपना कल्याण चाहेगा तो गीता के आदर के बिना रह सकेगा नहीं। और भोगों में फंसे हुए तो हिंदू कौन सा आदर करते, गीता पढ़ती ही नहीं। ऋषि के स्वर्गाश्रम में रहने वाला एक पुस्तक विक्रेता अभी वृंदावन में मिला था, वो कहता था कि मैं पुस्तक विक्रेता हूँ, दूसरी पुस्तक लेता हूँ, गीता प्रेस की पुस्तक लेता हूँ, बिक्री करता हूँ, सत्संग होता है। कभी सत्संग में गया नहीं ऐसी निर्देश हूँ तो मैं सत्संग जाता हूँ। देख लो कितना वर्ष गया, 1989 इतना वर्ष मैं सच में जाता हूँ वहां। और वो किसी 15-20 वर्ष बताए कि याद नहीं संख्या, इतने वर्षों से पुस्तकों में दुकान है, पुस्तक बिक्री करता है, पर सत्संग होता है इसका पता ही नहीं। अरे सत्संग में हमारे को पता ही नहीं, अब पता ही क्या है, सत्संग जाते ही नहीं। जहां इतनी विलक्षण बातें होती है हम खींच जाते हैं, पुस्तकों को विक्रेता पुस्तक लेने चले गए। लोग जानते नहीं कल्याण क्या होता है, गीता प्रेस क्या है, जान पता नहीं, हम पता नहीं। आश्चर्य आता है, हिंदू है और पुस्तकों का विक्रेता है, और कल्याण को जानता नहीं, गीता प्रेस को जानता नहीं, जानते हैं सत्संग को जानते हैं, और वही देता है। चंद्रमा समुद्र में रहे तो चंद्रमा जंतु जीव है ना, वे सब चंद्रमा अपने ये भी चंद्रमा यही जीव है, ऐसे जल का ऐसी बात नहीं जानते। आप लोगों का हम लोगों का बड़ा भाग्य है जिसने हम जानते हैं कल्याण क्या है, गीता पुरुष में कितना साहित्य दिया है, कितना लोगों का कल्याण किया है, और कितना कर रहा है, और कितना करेगा, जिसको कोई ठिकाना नहीं है। ऐसी विचित्र बात है, तो आप जो हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, अरे भाई इतना साहित्य हमारे सामने है, उनको देखो तो सही, पढ़ो तो सही, घर में चीज है। बीकानेरी कहावत है, खाक में कटोरी लोगों ने गुस्सा सुमारे, लड़ाई करे तो गुस्सा ही हो गए, अरे कटोरी घर मारे नहीं हो तो घर में आपकी गीता जी पसे वन पसे वहां गए वहां गया वहां क्या कर रहे हो, आपके पास सब शक्ति रहते हैं। उसका भी विचार उसका भी विस्तार गीता प्रेस से हुआ और शेर जी ने कितना काम कर दिया, घर घर में गीता हो गई, दूसरे छापा खाना गीता छापना बंद कर दिए, चलती नहीं, इतना गीता प्रचार किया, इतना प्रचार हो रहा है। और आप लोगों में अब भी नींद नहीं है, सुचेत नहीं, होश नहीं है, आप पढ़ करके देखो, तत्वेश नहीं पढ़ो, साधक संजीवनी पढ़ो, सेठों में लेख पढ़ो, हमारे भी लेख है वो पढ़ो, आप मन लगा कर पढ़ो, लोग आदर करते हैं, साधक संजीवनी का आदर करते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है, कहीं ऐसे ऐसे पुरुष मिले हैं, मिलने को आए हैं, ऐसी घटनाएं घटी, और आपके घर की चीज खास घरों पर जानते हो, थोड़ी कृपा करो, कृपानाथ गीता जयंती मनाते हो तो गीता असली जयंती वो है जो गीता के अनुसार अपना जीवन बने, गीता पढ़ो ज्ञान उपर देखो, घंटा दो घंटा रोजेना गीता के टीका पढ़ने में लगाओ, गीता के विषय से लेखों को पढ़ो पढ़ने में लगाओ, जीवन बदलेगा आपको, चिंता मिटेगी, संकल्प से मन घबरा जाता है, नींद नहीं आती, इतना दुख होता है, नींद नहीं आती, और गीता पढ़े तो शांति मिले, आनंद हो जाए, दूसरों को शांति मिले, इतना विलक्षण शांति का पाठ आप पढ़ लो, ये दूसरों को आपके दर्शन से स्पर्श से भाषण से चिंतन से मिलने से दूसरों को शांति हो, वो गीता करी, वो विवेक सत्य असत का नित्य अनित्य का विवेक, आप सत्य स्वरूप हो, सच्चिदानंद स्वरूप हो, परमात्मा के साथ स्वरूप हो, उत्पन्न होने वाली चीजों में क्या फंस गए, अनुत्पन्न होने वाली, परमात्मा के अंश होकर के प्रकृति के अंश में फंस गए, चेत करो अंधाता चेत करो, थोड़ा सा चेत करो, होश में आओ, गीता विवेक शक्ति को देखो, कितने विचित्रता बताइए, ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग, कर्म योग इतना श्रेष्ठ है, इतना सुगम है, खास कर्म योग उसको कामिना भागवत ने निर्णय किया, ज्ञान में न्यासी नाम है, ज्ञानी है वो तो त्यागियों के लिए है, और अत्यंत आसक्ति है उनके लिए कर्मयोग बताया है, नाती शक्त और नोग उस भक्ति योग बताया, आसक्ति भी नहीं है ज्यादा, बैराग भी नहीं है वो भक्ति योग, और संसार में फंसे उनके लिए कर्मयोग, कितनी विशेष है, अत्यंत त्यागी हो मन से उनके लिए ज्ञान हो, तो ज्यादा अपने में ऐसे ही मिलेंगे, अधिक से कुछ कुछ श्रद्धा कुछ दुष्टता कुछ संशय कुछ ज्ञान, ऐसे उनके लिए भक्ति हो वो उसे सिद्धि का, भक्ति योग सिद्धि न भगवान को पुकारो, उसे नाम से पुकारो, कीर्तन करो, हे नाथ हे नाथ, चलते फिरते हरदम हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु पुकारते रहो, मुफ्त में कल्याण हो जाए, जैसे बचपन में आपके हमारे सब के काम में लिए जो हमारे मन की नहीं होती रो देते, आज वो ही भगवान के रो वो काम करने को तैयार, ये सब ने लिया है काम में आपने हमने सब, ये रोने से काम सिद्ध होता है, सबके अनुभव की बात है, बालक बड़े में क्या करे रो दे तो काम करना पड़ेगा, माँ बाप को सबको करना पड़ता रो, वो एक रोने दे जो भगवान निहाल हो जाए, सोया रोता है तो बीवी काम कर रही है, बहू वे सास और गैर बीवी कहीं कहीं काम करें, बढ़िया तरह काम शुरू हो गए। ऐसे भगवान के सास ससुर है, संत महात्मा पुराने, ये सब वे सब भगवान को तंग कर रहे, स्वर्ण हो गए बना हमारे पक्ष में हो जाए। सब संत महात्मा भगवान के भक्त भगवान के पक्ष में नहीं, हमारे पक्ष में हो जाए। भगवान के जीरे करने लगे तब होता है भाई, तो करो भगवान को सीधी सीधी बात, हे नाथ हे प्रभु हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ पुकारो। कितना मुफत्व काम होता है सज्जनों, मुफत्व ऐसी भक्ति गीता बताती है। 56 से 67 तक 18वें अध्याय का प्रकरण आप साधक ने पढ़ो, आपको बता देंगे कैसा विलक्षण विचरण किया हो भक्ति का। विचरण बहुत विचित्र है, 11 श्लोक 56 से 66 थे, बहुत विचित्र प्रकरण, बड़ा विचित्र है। जगह जगह गीता में भक्ति का वर्णन है, आरंभ से अंत तक। ऐसे भक्ति करो भगवान है, हे नाथ पुकारो। आपकी कोई योग्यता जरूरत नहीं, रामायण में भी घाट आया है तो ये शरणागति घाट है, ये है सामान्य गऊ घाट, गऊ घाट और तो पैड़िया वाला घाट होता है, गऊ घाट पैड़ी होती सिद्ध होते चाहे कड़िए कीड़े पिया हो गए आप, पेट बकरी को पिया हो, ये गाय घाट है शरणागति का। ये गीता कहती है माँ मेरे को शरणम, ऐसी विचित्र ग्रंथ गीता है। इस गीता का उत्सव मनाने का मतलब हम रोजिना पाठ करें, याद कर रहे गीता की, कोई कहीं से पूछो चटाचट बता दे और याद कर रहे और गीता के अर्थों में गहरे प्रविष्ट होकर समझे और समझना ही नहीं आसन मजा हुआ। इसलिए गीता रूपी ढाली में अपना जीवन ढल जाए, गीता मय हो जाए, ये मौका है बड़ा सुंदर। गीता के प्रचार के समय हमारा जन्म हो गया, मेरे कई बात आती हुई हमारे पर भगवान की बहुत कृपा, 100-200 वर्ष पहले और मर जाते तो ये क्या पता रहे? और 500-700 वर्ष बाद में होते तो क्या पता। ठीक गीता प्रेस की कल्याणी के जवान में, जवानी में, जवानी में गीता प्रेस की जवानी, कल्याण की जवानी जिसमें हम आए, अब कल्याण बूढ़ा होने लगे हम आरम्भ से ही है, कितनी विशेषता है। अब जवानी आई है, गीता प्रेस जवानी आई है, इनको पूछो वे सेठ जी के समय कितना कागज छपता था, 700 टन और 700 टन 2200 टन 3 गुना 2200 टन छपते हैं कागज, उस समय से 700 टन छपते थे। तो गीता प्रेस जवानी आई है, अब गीता प्रेस जवान हो रहा है, 700 टन पर 700 टन इतनी ताकत है, अब कितनी बोलो 2200 टन। टन होता है 27 मन का, 1 टन होता 27 मन का, वैसे 2200 टन इतनी पूछने पर। और फिर पूछते हो कि भूख, मेरे को आज तो जाता है बड़ा इस जाया मेरे को, अन्न की बिक्री तो हो सकती है, कपड़े की बिक्री हो सकती है, घर में खर्च होता है, पुस्तक हमने ले ली हमारे पास बरसों से पुस्तक कोई गीते के पास कर लेते हैं, इन पुस्तकों की बिक्री कैसे बढ़ेगी, इतने जा रहा मेरे को पुस्तक देते खूब पुस्तक दे नहीं सकते, गीता प्रेस पुस्तक दे नहीं सकता, मशीन बैठा दी है इतने कागज सबसे फिर भी दे नहीं सकता। ये कोई भगवान की विशेष कृपा है, भगवान की देन है, इसमें भगवान की शक्ति काम करती हो, इसमें किसी व्यक्ति का ऐसा महत्व नहीं है, उसकी ताकत नहीं है, वो महान ताकत है भगवान की, और उस ताकत में हम आ गए, मौज हो गई हमारे। नारायण नारायण नारायण।